पेज नंबर 94, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस? जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पंछी कुछ न छूट पाए उससे। गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा। गेहूं उपजाओ, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं, जो गेहूं के लिए। बेचारे गुलाब भरी जवानी में शिश्कियां ले रहा है, शरीर की आवश्यकताएं मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है, किंतु चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर? मानव को मानव बनाया गुलाब ने, मानव मानव बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। यही नहीं, जब उसके पेट में भूख खाओ खाओ कर रही थी, तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थीं टंगी थीं। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियां गेहूं को उखल और चक्की में कूट पीस रही थीं। पशुओं को मार कर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उसकी शींग की बनाई तुरही। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े, बांस से उसने लाठी नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वासित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा के लालिमा से उगते सूरज की शनै शनै प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरण से, पृथ्वी पर चमचम करते लच लच ओस कणों से, आसमान में जब बादल उमड़े, तब उसने अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस से उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास व्रत तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, शानंद रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रास रचाता था, पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था। और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थीं, याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। किंतु धीरे धीरे वह संतुलन टूटा, अब गेहूं प्रतीक बन गया। हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, नर की यंत्रणाएं देने वाले, श्रम का उसका जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत ना कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी का, गलीच का, वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है, खेतों में गुलाब रो रहा है, बगीचों में दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें, किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है, मुड़ सकता है? यह महायात्रा आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहर कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे। अब गुलाब गेहूं की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो। क्या यह संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है, विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है। और उसने यह भी जता दिया कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूं तो क्या है, हम जान गए हैं। यह गेहूं तो उसमें आता कहाँ से है, हमसे भी यह भी नहीं छिपा है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की जुताई, कोढ़ाई, गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई? हम पृथ्वी और आकाश में उन तत्वों को सीधे ग्रहण क्यों न करें? ये तो अनहोनी बात, यूटोपिया, यूटोपिया। हाँ, ये तो अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह हस्तक मलावत सिद्ध होकर रहेगी, यह हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत कर ही देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के लिए ऐसे तरीके निकलने ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल करते हैं। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ पर सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष थी, जिसके अकाय शरीर थे, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी, जिसे दूसरों की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुर में भी राक्षसता ना आवे, इसके लिए क्या उपाय? अपनी वृत्तियों में भी वश में करने के लिए आज मनोविज्ञान 2 उपाय बता रहा है, इंद्रियों के संयमन और वृत्तियों के उन्नयन का। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने आए हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं, एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। आज भी देखिए गांधी जी के 30 वर्ष उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन गिरते जा रहे हैं। इसका उपाय एकमात्र है वृत्तियों के उन्नयन का। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए।